अच्छा जी किस लिए रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी प्यार कर रहे हैं? ओ, देखो ये कृष्ण अनुरागियां भगवती भगवती हैं, अर्थात ये गोपियां हैं, निरंतर कृष्ण के विचित्र प्रकार से उनके साथ में विलास करती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं और उसी का चिंतन कर रही हैं और अपने लिए इस चीज को दुर्लभ मनाती हैं। यह दुर्लभ है, ये हमारे लिए संभव पर नहीं है। अब मिलने के लिए कृष्ण से उत्कंठित हो रही हैं। साधक में यदि उत्कंठा न रहे इस प्रकार से साधन करने के लिए और कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, भागवत की सेवा के लिए उत्कंठा न रहे तो कुछ नहीं है। एक आदमी मान लिया ऐसे ही सब समय सेवा किया, ब्रज में रह करके भजन किया और ये सब को छोड़ करके संसार भ्रमण की चेष्टा हो तो क्या होगा? इधर उधर जा करके और फिर से संसार करने में या उधर संसारिक चीजों को भोगने में यदि रुचि हो गई तो उसके समान कोई दुर्भाग्य नहीं। इसलिए इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है भगवान की लीला कथाओं को सुन करके चित्त को वैसे बनाने का, और कोई दूसरा अनुकूल उपाय नहीं है इसके अतिरिक्त ऐसी निरंतर सुंदर हरि कथाओं को सुनने के अतिरिक्त। इसी को श्रवण दशा कहा गया, यही श्रवण दशा है। इन गोपियों, ये महाभागवती हैं, भगवती हैं, भगवान की अपनी शक्ति लादनी शक्ति हैं। ये नवीन नवीन रूप में कृष्ण का संग पाकर के उनकी सेवा करती हैं, तभी इनके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है और मालूम होता है कि हमने कोई कृष्ण की सेवा नहीं की, बल्कि ये पुलिंद कन्याएं हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं, बहुत सेवा कर रही हैं, हमने तो कुछ सेवा की ही नहीं, ऐसी भावना होती है। साधु संतों में यही, जो भजन अधिक करता है वो समझता है कि मैंने कुछ भजन नहीं, हमसे अधिक ये लोग कर रहे हैं, इनकी हरि सेवा के कथा सुनने में कितनी कितना आग्रह है, कैसे सेवा करते हैं हमारे अंदर नहीं, यही साधुत्व है। इसलिए अब ये सोच रहे हैं हमारे अंदर में तो ऐसी भावना नहीं आई, बड़ी दुखी हो जाती हैं विरह में। तब फिर कहते सखियां देखो ये कुमकुम कैसा है, उरुगाय कृष्ण के जो सुंदर अंग हैं उसमें जो पैर कैसा उनका है तलवा, और तो सब है श्याम वर्ण किंतु पैर हाथ की ये दोनों लाल होते हैं। मालूम होता है ये कुमकुम भी कृष्ण के चरणों के स्पर्श से ऐसा ही ये सुंदर एकदम अनुराग युक्त लाल है। इसी प्रकार से मंडित होकर के पुलिंदी रमणियां भी परम मंडित हो जाती हैं, सुशोभित हो जाती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिसे यदि कामना भी कुछ रहे संसारी वो सब दूर हो जाता है, सब प्रकार की कामनाएं दूर हो जाती है, भक्ति अपने आप उन सब चीजों को दूर कर देती है। और जो सब लिखा है मैंने कुछ छोड़ दिया है। ये कह रहे हैं कि ये श्रीमती राधिका जी के लिए ही कहा गया, ये राधिका जी के ही भाव हैं और तब दूसरे दूसरे गोपियों के जो भाव थे ये स्पेशल रूप से श्रीमती राधिका जी का ये भाव है। यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभे क्षणायतम अहम पूर्व अहम पूर्वम मिति संस्पृश्य रेमी इतना बजा। मूल रूप में हम लोग इसको पाने के लिए साधन करेंगे भक्ति का, विशेष करके भक्ति स्वामी सिंधु और दूसरे ग्रंथों में जैव धर्म इत्यादि में कैसे भजन करना चाहिए ये सब बतलाया गया। इन सब चीज पाने की जिनमें लालसा हो दिन रात उसी का चिंतन करेंगे, कैसे हम लोग किस साधन के द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते। विशेष करके श्रीमद् भागवत कहते हैं या चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद भी कहते हैं कि इन लीला कथाओं के श्रवण से ही ज्ञाने प्रयास उत्पाश्य नमन्ते जीवंत सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी प्रायशो अजित जीतो अपि त्रय त्रय लोक। इन कथाओं के श्रवण से अपने आप तत्व का ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी आएगा, कृष्ण के प्रति रुचि भी आएगी। जैसे उन्होंने बतलाया एक साथ में तीनों होते हैं, भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र चैस्त्री के काल। जहाँ पर भक्ति होगी ना, साथ ही साथ में भक्ति होने से तुष्टि पुष्टि और खाने की निवृत्ति जैसे प्रतिग्रास के साथ होता है, जैसे खाते हैं पेट भरता है, खाने की अनिच्छा होती जाएगी और दूसरी दूसरी खाने की चीजों के प्रति वैराग्य होता जाएगा, अब नहीं खाएं, पेट भर जाएगा तो कहेंगे अब कुछ भी देने से नहीं खाएं, ये विरक्ति। शरीर में पुष्टि भी होगी और पुष्टि तुष्टि और वैराग्य तीनों। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से साधन करने से भगवान के प्रति उसकी रुचि भी हो जाएगा, प्रेम होता जाएगा, अन्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य होता जाएगा और साथ साथ में उनको कृष्ण के प्रति पुष्टि माने प्रेम होता जाएगा। प्रेम की पुष्टि वैराग्य माने इतर वस्तुओं से वैराग्य और ये साधन में ही प्रीति उसकी होती चली है, अपने आप तीनों होता चला जाए। इसीलिए एक श्लोक पीछे से बतलाया वो कृष्ण में ही एकांतिक भक्ति होनी चाहिए। हाँ, जथातर और मूल निशी चेना त्रिप्यंती ततः स्कंद भुजो उपशाखा प्राणोपहारच जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युते। इसमें दो विचार हैं, दो उदाहरण हैं। जथा तरोर मूल निसीचनेन, पेड़ में पानी देने से, जड़ में देने से, शाखा और पल्लों में जैसे पानी चला जाता है वो हरा भरा हो जाता है, डालों में पत्तियों में और फलों में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पेड़ के जड़ में ही देने से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण का भजन करने से विश्व ब्रह्मांड की तृप्ति हो जाती है। उसको पृथक रूप में विश्व ब्रह्मांड के लिए किसी को वो करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा कहो जैसे मैं कृष्ण का भी भजन करूंगा और देवताओं का भी भजन करूंगा, अर्थात जड़ में भी पानी दूंगा और पत्तों में भी पानी दूंगा, फलों में भी पानी देगा, तो क्या होगा? यदि तू पत्तों में पानी देगा और फलों में, तो फल सड़ जाएगा और पत्ते में भी ये शक्ति नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले। उसी तरह से एकमात्र कृष्ण का ही भजन करो, दूसरे का नहीं, एकमात्र अनन्य भाव से। दूसरे का करेगा तो उनकी तृप्ति नहीं, तुम्हारा भजन भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अनन्य रूप से जैसे माली मूल में पानी देता है वैसे समस्त जगत का मूल ये कृष्ण। इस प्रकार से अनन्य भजन करते हुए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि जो बतलाए गए हैं, इस तरह से हम लोग आगे बढ़े तो ये सब का पीछे से अनुभव होगा और उसमें हम प्रेमा भक्ति में पहुंच सकते हैं। आज यहीं तक रहे, क्योंकि आप लोगों को भी दिल्ली जाना है और ठंड भी आज बहुत अधिक पड़ रही है।